हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे उनके सामने ऐश्वर्य और विभूति के साथ में। कभी उनके कंधे पर नहीं चढ़ सकते हैं, किंतु ब्रज के लड़के सब क्या करेंगे, उनके साथ में गैया चराते हुए बंसी बजाते हुए कृष्ण को पछाड़ देंगे। कृष्ण पराजित होकर के हंसेंगे, अपना जूठा कृष्ण को खिलाएंगे, उनका जूठा खाएंगे, उनके कंधे पर चढ़ सकते हैं और उनको आलिंगन में पास में बांध सकते हैं। कृष्ण उनके प्रेम के लिए ललचते हैं। हनुमान जी वहां नहीं जा सकते डर के मारे, उससे भी बढ़कर के यशोदा मैया का प्यार है, वात्सल्य भाव। इसमें क्या होता है, ये उनको कृष्ण को अंगुली दिखा करके डराती है, धमकाती है, तुमने मक्खन चुराया? नहीं मैया, मैंने कब मक्खन चुराया? मैया मैं नहीं, मक्खन खायो, मैंने तो मक्खन खाया नहीं। वो कौन परब्रह्म उत्तर दे रहा है, नहीं मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। अरे भोर भयो तो गौवन के पीछे मधुबन मोह पठायो, परब्रह्म झूठ बोल रहा, किन से? अपनी मैया से। मैया मैंने माखन खायो, जब भोर भई तो तुमने हमको मधुबन में गैया चराने के लिए भेजा और शाम तक गैया चराता रहा, शाम को जब आया तो उस समय में शाम हो गई थी रात, मैंने मक्खन कब चुराया? मैया करे तूने ही मक्खन चुरायो, तुम झूठ बोल रहा। ओहो मैया मैं तेरा तू मेरी जाया नहीं, मैं तुमने हमको पेट से पैदा नहीं किया, मैं किसी दूसरे का लड़का हूं, इसलिए तू मुझको ये जाम लगा रही। इतना सुनते ही यशोदा जी की आंखों में आंसू भरे, अब मैं कहीं जा रहा हूं दूसरी जगह जहां मेरी मैया होगी। यशोदा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, बस उनको गोदी में लगा दे दिया। नहीं बेटा तुमने मक्खन नहीं खाया। कृष्ण क्या कहते हैं, मैया मैंने ही मक्खन खायो, मैंने ही मक्खन खाया। और जो कहने नहीं तुमने नहीं खाया, तुम हमारा ही पेट का जन्मा हुआ, तुम हमारा बालक। और कभी कभी यही यशोदा मैया हाथों में दंड लेकर कहती हैं, तुझे गोदी नहीं लूंगी, तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी, और उसको रस्सी में बांध करके ओखल में बांध देती है। इसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। ये कृष्ण पर ब्रह्म होकर के, भगवान की परम सीमा होकर के, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, समस्त प्रकार के एक्विलेंसेस में होते हुए भी नारायण से लाखों गुणों श्रेष्ठ, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहानाधिराज गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण होते हुए भी आज मैया के प्रेम से और उनके डर से कांप रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे, मैया मुझे मत मार, बार बार उनके पीछे चले जा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गंगा यमुना बह रही है, काले कज्जल और उनके नेत्रों के जल मिलकर के यमुना और गंगा बह रही है, और डर के मारे टपक रहे हैं, कभी इधर चिपते हैं कभी उधर, मैया मुझे मत मार। किसको? परब्रह्म को। ये वात्सल्य रस है, ये संबंध है, ये प्रेम जीव का और जीव से। और इसे भी बढ़कर मैया को भी छोड़कर गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं और क्या करते हैं, जतकिंग करीत बहुसा खलु का अगवानी नित्यम परस्त पुरुष शिखंड मौले यच्चा सदा रश्मि विश्वानु जाया सतके कुंज भवनांगन मार्जन। कुंजों में उनकी सखियां राधा जी की सहेलियां कृष्ण को कुंज में नहीं जाने देती और कहते हैं कि काले को यहां पर आने की जरूरत नहीं, तो कुंज से बाहर। सीता जी को तो उन्होंने एकमात्र उनको त्याग कर दिया सबके लिए, राधा जी को त्याग करने की शक्ति नहीं है, कहेंगे तुम्हारी विवाहिता पत्नी हूं मैं, तेरी खाती पीती हूं कुछ, राधा जी उत्तर और गोपियां उत्तर दे देंगी। प्रेम में लेना देना नहीं होता, सर्वस्व देना होता है। गोपी ने अपना सर्वस्व जो कुछ था उनको समर्पण कर दिया है और कृष्ण ने अपना सब कुछ इन गोपियों को दे रखा है। इसको मधुर रस कहते हैं। जीव का संबंध इन पांचों में से कोई एक है जिसका नाम सनातन धर्म है, इसको समझिए, संक्षेप में मैंने बतलाया, इसका नाम सनातन धर्म है। इसकी ये पांच इसमें फूल लगे हुए हैं, ये सनातन धर्म है, इसको समझना है। और इस चीज को थोड़ा सा सरल करके आपके सामने बतलाऊंगा, कल फिर शायद मुझे यहां आना पड़ेगा। उसमें मैं कृष्ण का लीला चरित्र मधुर उनकी जो बातें हैं मैं बतलाऊंगा। यह संबंध सनातन धर्म के संबंध है, गोपियों के साथ में कृष्ण का कैसा मधुर संबंध है इसको बतलाऊंगा। एक राजा थे, उनका नाम चित्रकेतु महाराज था। भागवत का प्रसंग बतला रहा है। मैंने पहले कहा है कि वेदों का सार संकलन वेद समस्त उपनिषद रामायण महाभारत पुराण सबका सार श्रीमद् भागवत है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पहले व्यास जी सब शास्त्रों का निर्माण कर चुके थे किंतु उनको मन में शांति नहीं थी। शांति कब हुई? जब कृष्ण का लीला चरित्र लिखा श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभा। अरे भावुक और रसिक भक्त लोग जिसका पान करते हुए सकते नहीं, जो कि निगम कल्पतरु, कल्पतरु कहते हैं जो इच्छा करे वही दे देगा, वेद है ऐसा, उसका ये प्रपत्र रसमय फल है। ये कौन? श्रीमद् भागवत। उसमें गुठली नहीं है, उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको फेंक दे, रस ही रस वो है। गुरु परंपरा की धारा से इस जगत में आया है और सुखदेव गोस्वामी ने उसमें से रस आने के लिए छेद कर रखा है। सुखदेव गोस्वामी अपने मुख से इसका कहा है। ये वेदों का परपक्व फल है, इसलिए इसमें से एक पहला उपाख्यान इस प्रेम को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए मैं बतला रहा हूं। महाराज चित्रकेतु थे बड़े विद्वान अगाध, वेद उपनिषद शास्त्र सबका इनमें ज्ञान था। 60-70 हजार वर्ष की आयु हो गई थी, अभी बूढ़े नहीं नौजवान थे। उन्होंने एक के बाद दूसरे तीसरे चौथी करते हुए हजारों रानियों से शादी की किंतु किसी को भी एक पुत्र नहीं हुआ। मेरी भाषा समझ में आप लोगों को आ रही है? आप लोगों को ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कुछ पूछ सकते हैं या प्रवचन के बाद में भी आपको समय मिलेगा उसमें पूछ लें। श्री चित्रकेतु महाराज ने के हजारों रानियां थी किंतु बेटा एक से भी नहीं हुआ। बड़े दुखी थे, समस्त विश्व के भाग्य ही नहीं सारे विश्व के राजा थे, धन दौलत अगाध थी, सेनाएं थी, सबका वेतन ठीक से चलता था, स्त्रियां एक एक से सुंदरी थी, सभी लोग प्रजाएं सभी संतुष्ट थे। राजा संतुष्ट नहीं थे क्योंकि एक लड़का है। सोचते थे हमारे बाद में राज्य का अधिकारी कौन होगा, जब मैं मर जाऊंगा तो हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा, जिसको बेटा नहीं होता वो बड़ा दुर्भागा जिस जगत जीवन में। इसलिए सब कुछ होते हुए हमको पुत्र नहीं है, इसलिए बड़े दुखी थे। एक समय अंगिरा महाराज बड़े ऋषि थे, बड़े शक्तिशाली, वो उनके राज्य में पहुंचे। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत करके पूजा की, उनके चरण पखारे, अपने घर में छिड़का और उनको खिलाया पिलाया जैसा कि फल मूल जैसा खाते हैं, और इसके बाद में उनके चरणों में बैठ गए। अंगिरा ऋषि ने कहा जैसे तुम्हारी स्त्रियां कुशल से हैं, तुम्हारा राज्य ठीक है, धन की कमी तो नहीं? उन्होंने कहा मैं सब प्रकार से छूट हूं किंतु प्रभो मैं बड़ा दुखी हूं, इसलिए कि हमें कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं। उन्होंने तुम्हारे ललाट में कोई पुत्र दिखाई नहीं, पुत्र नहीं होगा। महाराज आप तो बड़े शक्तिशाली हैं, आप इच्छा मात्र से वर दे सकते हैं, पुत्र हमको जरूर होना चाहिए, उसके बिना मैं सुखी नहीं होगा। उन्होंने कि भगवान का भजन कर तब तू सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा जी महाराज भगवान का भजन हम कर लेंगे, अभी हमको एक पुत्र दे दीजिए, किसी तरह से नहीं माने। अच्छा तो ठीक है, तू नहीं मानता तो तुमको पुत्र होगा किंतु हर्ष और सुख दो, दुख और सुख देने वाला होगा पुत्र। महाराज ठीक है, जैसा भी हो दुख और सुख देने वाला तो सब संसार में रहता ही है, हमको ऐसा ही पुत्र हो। कहे ठीक है तुमको होगा किंतु हर्ष और दुख होगा, ठीक है कोई परवाह नहीं पुत्र हो। ये कह सकते ऋषि चले गए और ठीक 9 महीने के बाद में उनका एक चांद सा मुखड़ा, बड़ा ही सुंदर खूबसूरत एक लड़का पैदा हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हुए, राज्य में बधाइयां बजने लग गई, सारी प्रजाएं बड़ी खुशी हो गई और लड़का चांद की तरफ में जैसे एकम से बाद में द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी का चांद बढ़ता है, ऐसा लड़का भी बहुत सुंदर सुकांत और सब गुणों से भर मनो हंसता तो फूल गिरने लगते। इतना सुंदर जैसा सुंदर लड़का उन लोगों ने देखा नहीं। धीरे 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 वो 5 वर्ष का हुआ। राजा राज्य छोड़कर के उसी रानी के पास में बैठा रहता और बच्चे को गोदी में लेता, खिलाता, दुलार करता, प्यार करता। उसकी और जो रानियां थीं ईर्ष्या से भर गई, ये राजा हमें एक दासी की भांति भी नहीं पूछता है। सब समय राजा उसी रानी के पास में रहता है और उसी के लड़के से रमा रहता है। हम दासियां हैं, एक साबुन और तेल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, ये कुछ नहीं पूछता है। तुम अच्छी है बुरी है एक बार हमारे तरफ में नजर भी नहीं करता। बड़ी दुखी, ये सब दुखों का कारण वही बालक है। ऐसा सोच करके सबने मिल करके षड्यंत्र करके दूध में कालकूट 20 मिलाया और सीप में, समुद्र के किनारे जो सीपें होती हैं, सितुहार जिसको कहते हैं, चम्मच के बदले में उसमें हम लोग पहले व्यवहार करते थे, बच्चों को उसी से दूध पिलाते, बस उसी में रख करके उसको पिला दिया जब ये कहीं काम में थी। और बच्चा को ये कालकूट 20 मिलते ही बस लड़का काला हो गया और एक नंबर गया, प्राण निकल गए। वो पलने में झुलाई हुई थी, रानी ने कहा कि बहुत देर हो गई, बच्चा रो नहीं रहा, जल्दी सोच को ले आओ, उसे दूध पिलाऊंगी। जब दाई गई देखा, अरे दैया रे मैं तो मारी गई, छाती पीट पीट करके वही बेहोश हो गई। रानी दौड़ी देखा कि हमारा बेटा तो मर गया। कैसे मर गया? और वो भी बेटे के लाश के ऊपर में गिर पड़ी मूर्छित होकर। राजा को पता लगा, राजा भी दौड़ा हुआ आया, एक तरफ रानी गिरी एक दूसरी तरफ में राजा, सारी प्रजाएं रोने लगी, कोई भी सांत्वना देने लायक नहीं रहा। और उस समय में फिर वही अंगिरा ऋषि नारद के साथ में वहीं पर वेश बदल करके आए, इनको लोगों ने पहचाना नहीं। इन लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो इतने आदमी, बात क्या है? तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। अरे बतलाओ तो सही, भले मानुष किस लिए रो रहे? अरे बेटा इनका मर गया, देखता नहीं है? अरे मर गया, गया कहाँ? गया काशी गया, बनारस गया, फिजी गया, कहाँ गया? कब आएगा? जो गया तो आएगा। अरे मूर्ख लड़के, वो वहां गया जहां से लौट करके कोई नहीं आता। मैं झूठ बोल रहे हो, कहाँ गया? यही तो सो रहा है, यही तो बच्चा तुम्हारा सो रहा है, कहीं ये बोलता नहीं है, तो बोलता क्या नहीं है, पड़ा तो है यही, इसी को अपना बेटा माना, इसी को तुमने अपना नाती माना, इसी को तुमने प्यार किया, खिलाया, लाल पाल किया, तेल अपन लगाए, तो फिर ये तो सामने बैठा था, नहीं इसकी आत्मा निकल करके गई। हाँ हम आत्मा के लिए रो, अच्छा ये तो बतलाओ जिस आत्मा के लिए रो रहे हो वो कितना लंबा था,
कितना चौड़ा था,
काला था या गोरा था, कैसा था?
तो हमने तो देखा नहीं।
और तो देखा नहीं, जो देख रहा है उसे तो बात नहीं करता है, उसको उठाता नहीं, बोलता नहीं, और जो चला गया उसको देखा नहीं, उसके लिए रो रहा है। इसके लिए रोने की क्या जरूरत? लाखों लोग तो मरते हैं, उसके लिए कोई नहीं रोता, अपने लिए रोता है, जैसे ये मेरा है, यही संसार है। वो आत्मा जो चली गई वही परमात्मा कांश है, वो नित्य है, फिर वो दूसरे शरीर में जाएगी, उसका धर्म विकृत नहीं होगा, वो सब समय एक रस रहेगा। शरीर का धर्म बदल जाएगा, इसके माता पिता बदल जाएंगे, इसकी आसक्ति की वस्तुएं, कल सुअर के यहाँ पैदा हुआ तो कहे सुअर मेरी मैया और सुकर हमारा पिता है, बंदर का बच्चा पैदा होगा तो उसका बदल जाएगा, किंतु आत्मा का नहीं बदलेगा। नारद ऋषि के उपदेश को सुनकर के कहा ये तो नारद ऋषि है। नारद ऋषि ने कहा उस बच्चे के पीठ पर, यहाँ पर छाती पर हाथ रख दिया, बेटा जल्दी से उठो, तो तू कहाँ गया है, तुम्हारे माता पिता और सब लोग रो रहे हैं। उनके छाती पर हाथ रखते वो बैठ गया, है किसने मुझे बुलाया, मैं बड़ा सुख से था, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी मैया है, मैं इनका 50 बार पिता हुआ और इस बार इस जन्म में मैं इनका पुत्र हुआ, तो हमको पुत्र कहते हैं, हमने तो इनको कभी पुत्र नहीं माना, अभी मैं जहां गया अब दूसरे कहते हैं कि मैं इनका पुत्र हूं, अरे मैं तो पुत्र हूं केवल प्रभु का, कृष्ण का, वही हमारे प्रियतम पिता है, वही हमारे संबंधी हैं, सगे हैं, सब कुछ है, जगत का नाता 2 दिन का। इसलिए आत्मा अजर अमर नित्य शाश्वत है, कपड़े की भांति शरीर को धारण करती है, वंशात जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहणाति नरो प्राणी, एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश कर। आप लोग समझेंगे, आप लोगों का ये मौलसी पट्टा ये सीधी नहीं है, अभी कुछ दिनों के बाद में है तो 100 वर्ष 200 वर्ष बाद में, या कभी कल परसों तरसों जाना पड़ेगा इस को छोड़ करके। ये हमारा घर नित्य घर तो बोलो बैकुंठ है, बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, दिस इज दिस पॉलिसी, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसलिए चित्रकेतु महाराज जी इनके उपदेशों को सुन करके उनको ज्ञान भवन के चरणों में गिर गए, प्रभु आप मुझे रक्षा की, उनको उन्होंने उनको मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और रानिया जिन्होंने बीज दिया था वो उनके सामने नारद जी के पास में आई और उन्होंने कबूल किया कि हमने बीज दी थी, आप हमारे लिए अब क्या होगा, हम तो जन्म जन्मांतर हम तो नरक में जाएंगे, हमारे उद्धार का उपाय बता। उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, उनको भी दिया, बस इस नाम को जपो, बतलाया क्या, हरे नाम अव केवलम कलम नास्तेव नास्तेव गति, और कोई कलयुग की गति नहीं है, इस नाम के द्वारा ब्रह्म कौन है कृष्ण, इसकी अनुभूति होगी, उनका जो प्रेम है हमारे हृदय में आएगा और उसी के द्वारा हम सहज सहज रूप में उस कृष्ण को पा जाएंगे गोलोक वृंदावन में, जहां तक फिर लौटना नहीं होता। जगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, इस जगत में रहते हुए हमारे अंदर में ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा जो कृष्ण नाम लेते चित्त द्रवित हो जाएगा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी, नयनं गलदाश्रुधारया बदनं गदगदरुद्धया गिरा कुलकर्णिकितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यदि नाम करते हुए कृष्ण का नाम चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते, तो क्या समझो हमारे ये दोष, हमने कुछ अपराध किए हैं, वैष्णव के चरण में कुछ उनकी निंदा की होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो कृष्ण का नाम इतना मधुर, इतना शक्तिशाली, जो अजामिन एक बार अपने बेटे के लिए नारायण नाम उच्चारण किया और बैकुंठ में चला गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान बन गए वाल्मीकि, और मरा जपते हुए और राम नाम हुआ और बैकुंठ को चले गए। तो कोई जानबूझ करके बड़े प्रेम के साथ में हरे कृष्ण करेगा और उसको कृष्ण प्रेम नहीं होगा, आंखें नहीं द्रवित हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कृष्ण से बढ़कर के मधुर कोई नहीं। इसलिए परम तत्व सनातन धर्म के मूल पुरुष कृष्ण है और हम उनके अंश हैं। जीव का परमात्मा का परस्पर जो संबंध प्रेम है, प्रेम से ही जुड़ते हैं, प्रेम के बिना वो लाख आप पूछ कीजिए, नाम भी यदि प्रेम के साथ में नहीं होगा नहीं मिलेगी। एक शर्त यही है कि जिस व्यक्ति में प्रेम होगा, अरे बिगरानी को देखो, उनको भिलनी को देखो, सबरी भिलनी को फूलों से उनके लिए मार्ग की रचना करती है, हमारे राम कब आएंगे, और जूठी बेर उनको खिलाती हैं, खाते हैं। ऋषियों ब्रह्मत्यों के और मायावादी उस समय जो ऋषि थे उनके यहाँ नहीं गए। प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रेम ही सनातन धर्म है। अभी प्रेम हमारा विकृत है, जिस समय सब जगहों से प्रेम निकल करके राधा कृष्ण के चरणों में जब आएगा तो वो सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च भाव। अब कल हम इसके संबंध में करेंगे, आज थोड़ा सा कीर्तन करके इसके बाद शायद आरती होने वाली होगी, इसके बाद कल अधिक से अधिक लोग आएंगे, कल हम इसके संबंध में कुछ और कुछ आगे की कड़ी बतलाएं।
Thank you.